महाबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 14। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य,
ॐ शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहन्तानां,
नमो सिद्धानां, नमो आयरियाणं,
नमो वच्छायाणं, नमो लोये
सौवसाहूणं। भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्।
आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें अभी हम दूसरी स्थितिबंध अधिकार की बात चर्चा कर रहे थे और हम दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 56 पर आ गए, 56। देखो यहाँ अपना जो जघन्य का प्रकरण चल रहा है, जघन्य स्थितिबंध की बात चल रही है, उसमें काल देख रहे हैं हम। जघन्य का लगातार काल कितना होगा उसकी चर्चा हम कर रहे थे। देखो 5 मनोयोगी उस यहाँ से पढ़ेंगे योग मार्गणा में, नीचे का पैराग्राफ। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में 7 कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है। योग तो पलटता है, तो इनमें जघन्य कहाँ होगा? हाँ, 10वें में ही होगा, 10वें 9वें जो यथायोग्य जहाँ, यानी क्योंकि वहां पर भी एक ही गुणस्थान में बहुत बार योगों का पलटना होता है, इसलिए वहां पर जो 10वें गुणस्थान में मन, यानी वो जो अंतिम स्थितिबंध का जो काल है अंतर्मूर्त, पहले मनोयोग शुरू हुआ और जघन्य स्थितिबंध शुरू हुआ तो एक समय तक मनोयोग रहा और वचन योग में चला गया मान लेते हैं, तो एक समय में वो जघन्य घटित हो सकता है, या मनोयोग चालू हो गया और जघन्य बंध भी शुरू हुआ तो भी अंतर्मूर्त उसका हो सकता है, मनोयोग के काल तक उसका जघन्य रहा, इसलिए एक समय से अंतर्मूर्त होता है। अब अजघन्य का भी बता रहे हैं, अनादि से अजघन्य ही था, परंतु वहां अजघन्य का एक समय कैसे घटित होगा? हाँ, 11वें में गया तो बंध नहीं था, और मान लेते 11वें में मनोयोग चालू था और 10वें में उसका मनोयोग का एक समय बाकी था, तो मनोयोग के रहते हुए उसने एक समय के लिए अजघन्य किया, फिर वचन योग आदि का योग कुछ हो गया उसका, ख्याल में आई बात ये? हाँ, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्ति बताया है, क्योंकि योग का काल ही अंतर्मूर्ति। काय योगी जीवों में अजघन्य का तो अन्यत्र भी घटित होता है, क्योंकि अजघन्य है और मान लेते हैं ना मरण के सम पहले उसका मनोयोग में आया एक समय के लिए और उसका योग पलट गया, ऐसे व्याघात से भी होता है, मरण से भी होता है, तो उसमें भी अजघन्य का एक समय घटित हो सकता है। काय योगी जीवों में 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जघन्य के लिए वही सोचना है 11वें में, जैसे हमने मनोयोगी वचन योगी के लिए सोचा था वैसे उसका भी सोचना है, और अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है। क्योंकि अनादि से वो अजगण्य होता रहा, तो अनंत काल उसका, जब तक जगण्य नहीं करेगा या जब तक उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा तब तक उसका अनंत काल वो अजगण्य वाला ही होगा। क्योंकि काय योग में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। अनादि अनंत नहीं सकते हैं, कह सकते हैं उसको, पर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक एक केंद्रीय में रहा तो काय योगी रहा। औदारिक औदारिक मिश्र कारवाण सब काय योग के ही भेद हैं। यानी जब तक द्विंद्रिय में नहीं आया, द्विंद्रिय में क्या होता है, काय योग पलटकर वचन योग हो जाता है। इसलिए अजगण्य तो ऐसे भी अनादि से चल ही रहा था, परंतु काय योग का लंबा काल कितना है, तो अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। अब औदारिक कायोगी जीव में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। क्योंकि हम श्रेणी में जो देखते हैं दसवें में, तो वहां औदारिक का योग होगा या मनोयोग होगा या वचन योग होगा, तो उसके समान यहाँ पर भी घटित होता है। और जघन्य स्थितिबंध का काल, जघन्य काल एक समय, जैसे अन्यत्र सर्वत्र देखा था जहां योगों का परिवर्तन होता रहता है, तीनों योग है या दो योग है, तो एक समय घटित होगा। और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है, यानी लगातार औदारिक कायोग में रहने का काल वो खर पृथ्वी का एक जीवों में उनकी जिसकी आयु 22,000 वर्ष की है, तो शुरुआत में औदारिक मिश्र रहा, शरीर पर्याप्ति होने पर औदारिक कायोग रहा उसका मरण तक, इसलिए उसको ले लिया। औदारिक मिश्र का योगी, वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों में, पेज नंबर है 56। हम योग मार्गना में देख रहे थे नीचे से पांचवी लाइन, और हमारी बात चल रही थी जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध की। औदारिक मिश्र का योगी, वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों में अपने उत्कृष्ट स्थितिबंध के समान काल है, यानी एक समय से अंतर्मूर्त तक। इसमें भी अथवा कह के दो मत थे ना, क्योंकि वो मिश्र का योग के अंतिम समय में अगर उत्कृष्ट होता है तो पहले से लगातार वो अनुत्कृष्ट रहेगा, परंतु उन्होंने कहीं पर भी उसको स्वीकार किया है, इसलिए एक समय से अंतर्मूर्त हो सकता है। वैकृत कायोग, देखो निकालो उत्कृष्ट स्थितिबंध में क्या लिखा था, उत्कृष्ट का देखना हमको, और हमारी मार्गणा किसकी चल रही है अभी, योग की, पेज नंबर 36 पर। हाँ स्वामित्व ही देखना है ना, नहीं नहीं स्वामित्व नहीं, सॉरी काल देखना है, काल देखना है, पेज नंबर 51 पर है। ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन, औदारिक मिश्र का योगी, वैकृत मिश्र का योगी, आहारक मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। ऐसा ही जघन्य के लिए स्वामित्व है ये कह रहे हैं, और वह अनुत्कृष्ट के लिए जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त होगा, तो यहाँ पर भी अजघन्य के लिए वही घटित होगा। जघन्य का एक समय नहीं होगा, जघन्य का हो सकता है, फिर भी जघन्य का अंतर्मूर्त कहाँ है, तो अंत में क्यों नहीं, अंत में उसका उत्कृष्ट होता है, इसलिए पेज नंबर 51 के समान है। यानी जगन्य का एक समय से अंतर्मुख और अजगन्य का अंतर्मुख। वैक्रिक कायोगी जीवों में मनोयोगियों के समान काल है, उनके लिए जगन्य कौन होगा? चौथे गुणस्थान वाला विशुद्ध वाला जीव, उसमें एक समय से अंतर्मुद घटित हो सकता है और जगन्य का भी। इसी प्रकार आहार कायोगियों के जानना चाहिए, कार्मण का योगी और अनाहारकों में अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिबंध के समान काल है। पहले में पहले हमको यह नक्की करना है कि कार्मण का योगियों में जघन्य बंध किसके होगा, तो फिर हम काल गठित कर सकते हैं। ना ना ना, स्थितिबंध तो हाँ सूक्ष्म एक निरीक्षण। वो तो एक समय से तीन समय तक इस तरह से है। विशेषार्थ देखो यहाँ लिखा है 57 पेज पर, काय योग में जगन्य स्थितिबंधक शपक श्रेणी में होता है, इसलिए इनमें अजगन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी काय स्थिति प्रमाण घटित हो जाता है, जो कि अनंत काल अर्थात असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण उपलब्ध होता है। काय स्थिति का अर्थ है काय योग ही हमारी मार्गणा है, तो लगातार काय योग में रहने का उत्कृष्ट काल उसको काय स्थिति कहते हैं। शेष कथन सुगम है। अब स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का काल ओघ के समान है। ओघ के समान यानी क्या होगा? हाँ, एक समय से अंतर्मुद। एक समय कैसे घटित होगा? देखो उसके वेद के अंत में उसका जो स्थितिबंध है ना, जघन्य कब है उसका जो उदय है वेद का, उसके अंत में होगा, अंतर्मुद तक होगा। हाँ, नवे गुण सवेदी अवस्था में, तो उसमें वो मर गया, जघन्य चालू किया था और मर गया, तो देव में भले उसका वेद वही रहे या बदले, परंतु वो जघन्य तो स्थितिबंध नहीं रहेगा ना, वो चौथे गुणस्थान के योग्य स्थितिबंध होगा, इसलिए तीनों में ही एक समय होगा। और नपुसक वेद के उदय से ही श्रेणी चढ़ने वाला बदल जाएगा, परंतु हमें तो एक समय घटित होता है। पुरुष वेद में एक समय कैसे घटित होगा? पुरुष वेद ने जघन्य स्थिति बंद किया है, भले वो पुरुष वेद ही रहा पर उसका अजघन्य चालू हो जाएगा, इसलिए उसमें भी घटित होगा। अजगन्य का पुरुष वेद में अजगन्य कब होगा? नहीं, क्योंकि उतरते समय भी अगर अजगन्य किया तो फिर पुरुष वेद ही होगा, तो अजगन्य का अजगन्य ही रहेगा। अभी यही बता, इसीलिए बता रहे हैं। देखो स्त्री वेद में अजगन्य स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय है। वो कैसे है? श्रेणी उतरते समय स्त्री वेद का उदय शुरू हुआ तो उसको हम स्त्रीवेदी जीव कहेंगे। उसने अजगन्य स्थिति बंध किया, क्योंकि जगन्य तो क्षपक श्रेणी में होता है। तो जगन्य का ओक के समान क्षपक श्रेणी में लेते तो वहां मरण कहां है? हमने उसको अंतर्मूर्ति होगा ना, अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि क्षपक श्रेणी में एक समय घटित कैसे होगा? शपक श्रेणी यहाँ लिखा नहीं है, पर हमको मालूम है ना, क्योंकि देखो पेज नंबर 53 निकालो। नीचे से दूसरा पैराग्राफ, जगन्य बंध के काल का प्रकरण है ना, उसमें सात कर्मों के जगन्य स्थिति बंध का कितना काल है, तो जगन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त बताया, एक समय नहीं बताया। ये मैंने अभी जो बताया है उसको फिर सोचो देखो, क्योंकि मैं तो उपशम श्रेणी में घटित कर रही थी, परंतु हमको क्षपक श्रेणी में घटित करना है, तो जगन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। अंतिम स्थिति बंध का काल लेना, वेद के उदय से ही चढ़ने वाले के अंतिम स्थिति बंध का काल, दोनों ही अंतर्मूर्त हो गए। अब स्त्री वेद में अजगन्य स्थिति बंध का जगन्य काल, अब श्रेणी उपशम श्रेणी में अजगन्य ही रहता है, तो अब अपगत वेदी था तब भले अजगन्य था, परंतु मार्गणा उसकी अपगत वेदी की थी, स्त्री वेद का उदय शुरू हुआ तो उसका तो अजगन्य ही है, उसकी अपेक्षा से क्षपक की श्रेणी की अपेक्षा यह अजगन्य ही कहलाएगा। और फिर एक समय में मरकर देव हुआ तो पुरुष वेदी हुआ, तो उसका एक समय घटित होगा, और उत्कृष्ट काल स्त्री वेद का जो काय स्थिति है उत्कृष्ट, सौ पल्ल्य पृथक प्रमाण है। अब पुरुष वेद में अजगन्य का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, लक्ष्मी जी ये बताओ कैसे होगा? कहाँ गया? उतना तो भी वो वहां पुरुष वेदी ही रहा ना, मरा तो भी पुरुष वेदी हुआ, स्त्री वेदी मरा तो पुरुष वेद में चला जाता है, और पुरुष होगा हाँ? दो दुपे उपशम वो छोटा लेना कि एक पुरुष वेद का भाव लेना, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ा तो दो बार चढ़ा तो क्या हुआ हाँ? कैसे लेना? अजगन्य का अजगन्य ही रहा ना, पुरुष वेद का पुरुष वेद ही रहा, अंतर्मूर्त यानी फिर उसने ग्यारहवें में गया तो बंद रुक गया, इसलिए यानी उदय से उदय तक लेना। ये नीचे आया पुरुष वेद का उदय शुरू हुआ, उपशम श्रेणी दोबारा चढ़नी है उसको, तभी घटेगा। देखो देखो कभी शुरू हुआ उसका, उतरते समय शुरू हुआ, उतरते समय सवेदी हुआ तब उसका पुरुष वेद सहित अजगन्य चालू हुआ, अब नीचे आया छठे तक और फिर दोबारा श्रेणी चढ़ा और अपगत वेदी हुआ, तब तक का अंतर्मूर्त लेना। मैंने दो बार उपशम श्रेणी, उसके बीच में पुरुष वेद के रहते हुए अंतर्मूर्त तक उसने अजगन्य बंध किया, दूसरी बार क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है ना, अजगन्य जगन्य काल है वो, अजगन्य का जगन्य काल, देखो सबका जगन्य काल अंतर्मूर्त है, पुरुष वेदी हो स्त्री वेदी हाँ, और जगन्य का जगन्य काल अंतर्मूर्त करना है। दो बार उपशम के बदले दूसरी बार उसने क्षपक श्रेणी चढ़ी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतिम अंतर्मूर्त में जगन्य करेगा और उपशम श्रेणी चढ़ने में उसको अपगत वेदी होना पड़ेगा, नहीं समझे? यानी उपशम श्रेणी चढ़ उतर कर क्षपक श्रेणी चढ़ा। हाँ, क्योंकि अंतिम अंतर मुहूर्त में उसने जघन्य किया, यानी उसको उपशम श्रेणी में अपगत वेदी होने तक उसको बंद करना पड़ता। यहाँ बंद पहले उसका अजघन्य बंद रुक गया, जघन्य हो गया, अब नपुसक वेद में अजघन्य का जघन्य का एक समय, वैसे ही नपुसक वेद सहित श्रेणी उतर रहा है वो, उसका वेद का उदय शुरू हुआ, उसने एक समय के लिए अजघन्य किया, वो पुरुष वेद के लिए। हाँ देखो, पुरुष वेद का फिर पढ़ते हैं। पुरुष वेद में जघन्य काल ने अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक, यानी पुरुष वेद में रहने का उत्कृष्ट काल, तथा नपुसक वेद में उसी अजघन्य की बात चल रही। अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, उपशम श्रेणी उतरते हुए सवेद अवस्था में आया, नपुसक वेदी हो गया, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट बंद किया और मरा तो पुरुष वेदी हो गया। और उत्कृष्ट काल यानी नपुसक वेद में रहने का उत्कृष्ट काल लेना है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल है। एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक सारे नपुसक वेदी ही है, सब मिलकर भी असंख्यात पुद्गल परावर्तन ही कहेंगे। ऊपर भी आ सकता है, नपुसक वेद के साथ जन्म लेगा पंचेंद्रिय में, पहले तो एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक भटका, फिर नपुसक वेद सही थी पंचेंद्रिय में आ गया, उसको भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फिर भी वो कथन तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन ही होगा उसका। नित्य निगोद वाले को यहाँ नहीं लेना, क्योंकि वो तो जब क्योंकि शादी शांत काल लेना है हमको। हाँ, नित्य निगत को लेना ही नहीं है, वो तो अनादि से वही बात है ना, उसका अंत नहीं है ना, शादी शांत काल हम गिन रहे हैं। अपगत वेद में, अभी अपगत वेदी की बात आ गई, सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का काल ओघ के समान है, यानी ये अंतर्मूर्त तक होगा, अंतिम स्थिति बंद है ना, इसलिए अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय, क्योंकि सवेद में से अपगत वेदी हुआ, एक समय के लिए बंद किया और देव में गया तो फिर सवेदी हो गया, पुरुष वेदी हो गया। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल यानी अपगत वेद में रहने का उत्कृष्ट काल, बाद में फिर वापस आए ना नीचे और बंद किया उसने। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्राय संयम में छह कर्मों का काल है, यानी जघन्य का अंतर्मूर्त है शपक सूक्ष्म सांप्राय में होगा, अजघन्य का एक समय उपशम श्रेणी में सूक्ष्म सांप्राय में आया और मरा, और पूरा रहा तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त और जघन्य का तो हो ही जाता है। विशेषार्थ, जो जीव पुरुष वेद के वेद से उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है, वह उपशम श्रेणी में मरण कर नियम से पुरुष वेदी ही होता है, इसलिए इसमें अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय उपलब्ध नहीं होता। यही कारण है कि पुरुष वेद में सातों कर्मों के अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय नहीं कहा, फिर भी यह कैसे प्राप्त होता है यह घटित करके बतलाते हैं। एक पुरुष वेदी जी उपशम श्रेणी पर चढ़ा और उतर कर वह सात कर्मों का अजघन्य स्थितिबंध करने लगा, पुनः अंतर्मूर्त के बाद वह उपशम श्रेणी पर चढ़ा, यह अनिवृत्तिकरण के अंत समय में। अच्छा, ये अलग अलग कर्मों की बात बता रहे हैं, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में मोहनीय की, परंतु पुरुष वेद के उदय का अंतिम समय लेना है।
देखो लास्ट टाइम आपने
पुरुष वेद के उदय का ही अंतिम समय लेना, क्योंकि पुरुष वेदी कब तक कहेंगे? हाँ, अनिवृत्ति के अंतिम समय तक जाएगा ही नहीं, हमने उसको करेक्शन किया था। अनिवृत्तिकरण के बदले पुरुष वेद के अंतिम समय में उसने वहाँ जो उन्होंने बिंद विच्छित्ति की लिखा है ना, उसके बदले हमने ऐसा किया था, पुरुष वेद के अंतिम समय में उसने बंध करके अपगत वेदी हुआ, यानी अजगण्य बंध किया और अपगत वेदी हुआ। नहीं देखो, फिर से मैं पढ़ती, पुनः अंतर्मुण के बाद वह उपशम श्रेणी पर चढ़ा और पुरुष वेद के अंतिम समय में हो अनिवृत्तिकरण निकाल देना, अनिवृत्तिकरण के बदले पुरुष वेद के लिखो, पुरुष वेद के अंतिम समय में उसने, अब यहाँ लिखो आगे का पूरा वाक्य निकालना है, बंद करके फिर अपगति वेदी हुआ है, परंतु हमने उसको क्षपक श्रेणी पर इसलिए बात बताई थी कि वो अपगत वेदी होने तक रुकने की जरूरत नहीं, उसके एक अंतर्मुहूर्त पहले उसका जघन्य हो जाएगा तो अजघन्य मिट जाएगा। फिर से यहाँ क्या करना है, पुनः अंतर्मुहूर्त के बाद वह उपशम श्रेणी पर चढ़ा और इसके आगे क्या किया आपने? हाँ, पुरुष वेद के अंतिम समय में उसने आगे मोहनीय की वगैरह वगैरह बंद विच्छित्ति की वहां तक पूरा निकाल देना। हाँ, बंद विच्छित्ति यहाँ थोड़ी होती उसकी।
उसने के बाद,
हाँ उसने के बाद पूरा वाक्य निकाल देना, क्या निकालना? मोहनीय की तथा सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में उसने छह कर्मों की बंद विच्छित्ति की, परंतु वो पुरुष वेदी रहते हुए हमारी मार्गना पुरुष वेद की है, ये बात रह गई है। तो अभी कैसा वाक्य पूरा करना? तो पुरुष वेद के अंतिम समय में उसने, अभी लिखो, बंद करके अपगत वेदी हुआ, यानी उसके मार्ग ना बदल गए। अंतिम समय में वो अनुत्कृष्ट बंद करके
उसने भी निकाल देने।
हाँ, उसने नहीं चाहिए, पुरुष वेद के अंतिम समय में अनुत्कृष्ट बंद करके, सॉरी अजगण्य का चल रही हूँ ना बात, अजगण्य की बात, यानी अजगण्य बंद चल ही रहा था उसका, अपगत वेदी हुआ
अंतिम समय में,
अजगण्य बंद करके अपगत वेदी हुआ। उनके एक्सप्लेनेशन में थोड़ी त्रुटि रह गई है, हम तो उसको उससे भी आगे बढ़कर ऐसा कहेंगे कि क्षपक श्रेणी पर चढ़ा और पुरुष वेद के अंतिम अंतर्मुहूर्त में उसने जघन्य किया, वो ज्यादा संयुक्तिक लगता है। उपशम श्रेणी उतरते समय में अजगण्य चालू किया, जब वो वेद का उदय हुआ तब छठे तक आया, फिर उसने क्षपक श्रेणी चढ़ी, तो पुरुष वेद के अंतिम समय तक नहीं रुकना पड़ा उसको, उसके पहले अंतर्मुहूर्त में ही उसने जगण्य किया, ये तो हमने अभी अभी देखा था। यही कारण है कि पुरुष वेद में यह काल उक्त प्रकार से कहा है, यानी अंतर्मुहूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है। अब क्रोधादि चार में उक्त काल मनोयोगियों के समान है, मनोयोगियों में एक समय से अंतर्मुहूर्त बताया था, जघन्य भी और अजघन्य भी, परंतु हमने उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाया था। देखो श्रेणी में योगों का पलटना होता है, परंतु श्रेणी में कषायों का उदय पलटता नहीं है। क्रोध वाला है वो क्रोध वाला ही रहेगा, तो क्रोध के रहते हुए अंतिम स्थिति बंध कितना होगा? जैसे मोहिनी का हम देखते हैं ना, 2 महीने का मोहिनी का, तो बाकी कर्मों का यथायोग्य होगा, संख्यात वर्षों का होगा, बाकी का भी। समझ में आती बात? देखो क्रोध का उदय कब तक है? पहले अपगत वेदी हुआ, फिर अंतर्मूर्त पर क्रोध का उदय बंध था, तो तब तक उसको क्रोधी जीव कहेंगे हम। पहले गुणस्थान से 9वें के दूसरे भाग तक वो क्रोध का उदय है, तो वो क्रोध वाला जीव कहेंगे। तो क्रोध वाले जीव को जघन्य कब होगा? क्षपक श्रेणी चढ़ते हुए। तो क्षपक श्रेणी चढ़ते हुए होगा, तो उसमें जघन्य एक समय कैसे घटित होगा? अंतर्मूर्त ही होगा। हाँ, वेद जैसा होना चाहिए। मनोयोगी समान नहीं होगा, क्योंकि कषाय तो पलटता नहीं, अंतर्मूर्त ही होना चाहिए। हमने देखा था, लास्ट टाइम लिखा था मैंने, कषाय तो बदलता नहीं है, तो एक समय जघन्य कैसे होगा? यानी अंतर्मूर्त ही होना चाहिए। यानी क्रोध के उदय के रहते हुए लास्ट अंतर्मूर्त उसका जघन्य होगा। यहाँ मनभंगो लिखा है, परंतु वहां पर जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ही होना चाहिए। इन्हें ओग के समान हो जाना चाहिए। एक्चुअली मनभंगो लिखा है, हमेशा मनजोगी भंग लिखते थे, यहाँ क्या होना चाहिए? दूसरा कोई मनभंगो लिखा है, वेद जैसा ही होना चाहिए वहां पर। मणभंगो लिखा है, परंतु वो इत्थ पुरुष वेद जैसा भंग होगा उसका, मन जैसा नहीं होगा। उन्होंने तात्पर्य लिखा कि जिस प्रकार मनोयोगियों के 7 कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का काल कहे आए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। हाँ, यहाँ ये हो सकता है अजघन्य का जघन्य काल एक समय होगा और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि उसी कषाय में उतरा और उसी कषाय के रहते हुए फिर चढ़ा, ऐसा नहीं होगा। बीच में 6ठा 7वां होगा, उसमें कषायों का भी परिवर्तन होगा, और मरकर देव में भी चला जाता है, तो शुरुआत में अन्य भी कषाय हो सकता है, या अंतर्मूर्त के बाद वो नीचे आता है तो कषाय पलटता है। यानी मनोयोगियों के समान वो बात ठीक नहीं बैठती है, वेद के समान हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में इन्हें ऐसा हो सकता है नहीं, पर वहां तो स्थितिबंध जघन्य चालू हो गया क्रोध के रहते हुए, ऐसा तो नहीं होगा ना? क्योंकि जैसा हम कहेंगे ना क्रोध वेदक है, तो वहां अंतिम स्थिति बंध वहां रुक जाता है, फिर नेक्स्ट समय से उसका नया स्थिति बंध चालू हो जाता है। लब्धिसार में पढ़ा था हमने, ऐसा भी नहीं कि क्रोध के रहते उसके जगह स्थिति बंध अपसरण शुरू हुआ था, ऐसा भी नहीं होगा। देखो 92 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूल, क्योंकि इनमें जघन्य करने वाला बादर एक इंद्रिय पर्याप्त होगा, वो कभी भी कर सकता है विशुद्धि के काल में। अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि एक बार जघन्य करने के बाद फिर अजघन्य अंतर्मूर्त तक रहेगा। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, हमने देखा था मत्य ज्ञानी भले वो अनंत काल तक रहता है, फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद वो पलट कर नियम से जघन्य करेगा ही करेगा। विभंग ज्ञान में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी वो संयम के अभिमुख वाला लेना जीव अंतिम अंतर्मूर्त उसका, वो स्थितिबंध अपसरण का काल जो है अंतिम स्थिति बंध अंतर्मूर्त तक होगा। अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है, यह अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य काल देवनार की शासाधन में घटित हो सकता है। शासाधन में आए विभंग ज्ञान चालू हो गया और एक समय में मरकर मनुष्य तीरेंच में आ गया, तो अपर्याप्त अवस्था में तो विभंग ज्ञान नहीं रहेगा। एक समय आप कहाँ पढ़ रहे हैं? ना तो हो गया ना, विभंग ज्ञानी भी हमने पढ़ लिया। विभंग ज्ञानी हाँ, देवनारकी एक समय शासाधन में रहकर मरते हैं, तो उसका एक समय विभंग ज्ञान के साथ अजघन्य स्थिति बंध होगा। और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, कुछ कम इसलिए लिया कि अपर्याप्त अवस्था में उनके विभंग ज्ञान नहीं होगा। हाँ, सातवें नरक में। उन्हें सातवें नरक में पर्याप्त होने पर, और वो थ्रू आउट मिथ्या दृष्टि उसे रखना है। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, अब इन सबके लिए जघन्य है वो दसवें गुणस्थान में ही घटित होगा। शपक के मनपरे ज्ञानी संयत सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत, अभी बाकी की बात हम बाद में देखेंगे, परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत, इनमें जघन्य स्थितिबंध का काल उत्कृष्ट के समान है, यानी जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है। भले वो संयता संयत में भी परिहार विशुद्धि में भी एक ही स्थितिबंध अंतर्मूर्त तक चलता रहेगा, क्योंकि संयता संयत के जघन्य कब होगा तो सातवें के सन्मुख वाला लेना। परिहार विशुद्धि में भी सातवें में सर्व विशुद्ध वाला लेना, तो वह अंतर्मूर्त तक उतना का उतना बंद होता रहता है। असंयत अभव्य और मिथ्या दृष्टियों में मत्य ज्ञानियों के समान है, यानी एक समय से अंतर्मूर्त होगा बांदर एक इंद्रिय पर्याप्तों में। और अजघन्य का जो काल है अंतर्मूर्त से लेकर असंख्यात तुद्गल परावर्तन तक होगा। असंयत तो असंयत ही रहा ना, अभव्य कहो असंय, अजघन्य है तो अनंत काल केवल उसको असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक लिमिट नहीं रखना है। असंयमी रहा वो पांचों, इन्हें पंचेन्द्रिय हुआ तो भी असंयमी ही रहा, तो उसको अनादि से लेके अनंत काल, नहीं वो नहीं ले सकते ना, असंख्यात लोक के बाद फिर उसको जगन्य होगा, सॉरी अजगन्य का उत्कृष्ट, अजगन्य का जगन्य और अजगन्य का उत्कृष्ट, अंतर्मूर्त और असंख्यात लोक होगा, सॉरी अनंत काल नहीं ले सकते। हमने देखा था ना असंख्यात लोक के बाद फिर दोबारा वो जगन्य करेगा। अभी हमने मत्ते ज्ञानी में देखा था ना असंख्यात लोक देखा था ना, असंख्यात लोग देखा था, क्योंकि उनमें जगन्य करने वाला बादर एक इंद्रिय पर्याप्त होता है, इतने काल के बाद लौट कर वहां नियम से जाएगा ही जाएगा जीव। देखो अजगन्य का अंतर्मूर्त मिनिमम और मैक्सिमम असंख्यात लोग, चक्षु दर्शन वालों में त्रस पर्याप्तकों के समान है, यानी उसकी काय स्थिति लेना अजगन्य के लिए, बाकी चक्षु दर्शन में जगन्य तो दसवें में क्षपक वाले के होगा या नब्बे में, तो वह अंतर्मूर्तक होगा, जगन्य का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, और अजगन्य के लिए चक्षु दर्शन में रहने का उत्कृष्ट काल लेना। चक्षु दर्शन वालों में अजगन्य भी अंतर्मूर्ति लेंगे ना, उपशम श्रेणी दोबारा चढ़ेगा तो त्रस पर्याप्तों के समान है। त्रस की बात कहाँ है, कहाँ पर लिया, 56 पर। पंचेंद्रिय तत्रस ओग के समान है, क्योंकि वो तो अंतर्मूर्त होता है ना, जगन्य तो अंतर्मूर्त ही है, अजगन्य की बात, अजगन्य का ही अंतर्मूर्त ही है, वही दो बार श्रेणी के बीच में होगा। या ऐसा भी होगा ना, त्रस का एक भाव किया उसने, ऐसे चक्षु दर्शन वाला एक भाव किया उसने छोटा अंतर्मूर्त वाला, फिर अचक्षु दर्शन ही हो गया, ये हो सकता है। यानी अजगन्य का मिनिमम अंतर्मूर्त होगा और मैक्सिमम 2000 सागर होगा। पेज 58। अभी हमने चक्षु दर्शन वालों में पढ़ा त्रस पर्याप्तकों के समान है, यानी जगन्य कब होगा उनका, दसवें में लास्ट में क्षपक के, वो अंतर्मूर्त ही होगा, एक समय नहीं हो सकता, और अजगन्य घटित करना है तो अंतर्मूर्त दो श्रेणियों के बीच ले सकते हैं, या चक्षु दर्शनों में एक भाव किया उसने, यानी लब्ध्य पर्याप्त का भी भाव किया चक्षु दर्शन वालों के, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त पंचेंद्रिय अपर्याप्त, तो उसने अजगन्य अंतर्मूर्त तक किया, वो हो सकता है। और अजगन्य का उत्कृष्ट काल तो चक्षु दर्शन में रहने का उत्कृष्ट काल वो 2000 सागर होता है। अब अचक्षु दर्शन वाले और भव्य जीवों में ओघ के समान है, यानी जघन्य का अंतर्मूर्ति होता है वही क्षपक श्रेणी में होगा। और अजघन्य चक्षु दर्शन वालों में तो अनादि अनंत भी होगा अभव्यों में, इतनी विशेषता है कि भव्यों में अनादि अपर्यवस्थित विकल्प नहीं होता। ऊपर लिखा क्यों नवरी भव सिद्धि अनादियो अपजव सिद्धो नत्थी। वो अनादि अनंत उसमें नहीं लेना, जैसे हम ध्रुव बंदी नहीं लेते वैसे अनादि अनंत नहीं लेना। अवधि दर्शनी सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि और वेदक सम्य दृष्टि जीवों में काल अपने अपने उत्कृष्ट के समान है। अब अवधि दर्शनी सम्य दृष्टि क्षायिक सम्य दृष्टि, इसमें तो जघन्य तो क्षपक श्रेणी में होगा। वेदक सम्य दृष्टि में जघन्य कब होगा? अप्रमत्त गुणस्थान वाले, हाँ विशेष विशुद्धि के काल में होगा। तो अपने अपने उत्कृष्ट के समान है, यानी अंतर्मूर्त तो इन तीनों में तो जघन्य अंतर्मूर्त होता ही होता है। वेदक समय दृष्टि में भी अंतर्मूर्त होगा, वेदक समय तो मैं क्या लिया था, एक मिनट, उसका अपना उत्कृष्ट कहाँ गया? उसमें उत्कृष्ट सिद्धिबंध का जघन्य काल एक समय बताया था, ये यहाँ कैसे होगा? वो अजघन्य का काल उत्कृष्ट के समान होगा, अनुत्कृष्ट के समान। नहीं लगता? क्योंकि जघन्य स्थिति बंध का काल तो अंतर्मूर्त ही होगा, और जघन्य के बारे में हम सोच सकते हैं क्योंकि अवधि दर्शनी हो, समय दृष्टि हो, क्षायिक समय दृष्टि हो, क्षपक श्रेणी में उसका जघन्य होगा, वो अंतर्मूर्तक होगा। और अजघन्य के लिए अजघन्य, हाँ स्वामी निकालो कितना, 46 नहीं, वेदक समय दृष्टियों का तो पीतलेशा के समान अप्रमत्त को लिया है, परंतु समय दृष्टि क्षायिक समय दृष्टि कहाँ लिखा है?
वेदक समय दृष्टि के बाद,
वेदक समय दृष्टि के बाद
66 नंबर का पॉइंट है, वो भी पीतलेशा के समान।
वेदक समय दृष्टि नहीं, सामान्य समय दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि लेना है। वो तो रेगुलर अभिनिबोधि ज्ञानी के समान होना चाहिए। ओक के समान होना चाहिए। देखो पेज नंबर 41 पर है, देखो इसी प्रकार मनुष्य त्रिक
मिला,
पांचवी लाइन यानी ओग के समान मनुष्य त्रिक पंचेंद्रिय द्विक यानी जहां नवे दस गुण स्थान है, क्षपक श्रेणी है, उसको लेना है। त्रसद्विक पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, अपगत वेदी, लोभ कषायी, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, भव्य सिद्धिक, सम्यक दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि, सन्नी और आहारक। आयु के बारे में कुछ अलग विशेष था, परंतु सात कर्मों के बारे में तो वही बात थी। तो यहाँ उत्कृष्ट के समान कैसे कहा उन्होंने? उत्कृष्ट तो एक समय से अंतर्मूर्त तक हो सकता है, यहाँ जघन्य अंतर्मूर्त होगा। और अजघन्य के लिए उसकी जो काय स्थिति है वो उनके समान कह सकते हैं, उसकी बात नहीं है। हाँ लिए थे ना हमने। हाँ अजघन्य के लिए अनुत्कृष्ट के समान काय स्थिति कह सकते हैं हम, वैसे भी उसकी अपनी अपनी काय स्थिति लेनी है। साधिक तैतीस अगर लेते हैं, समय दृष्टि के लिए वही साधिक 66 सागर लेना है समय दृष्टि के लिए। वेदक समय दृष्टि के लिए अकेला 66 सागर लेना है। इस तरह से हम ले सकते हैं उसको। यानी अजगण्य के लिए हम उसकी काय स्थिति, अजगण्य का उत्कृष्ट काय स्थिति प्रमाण, और अजगण्य का जघन्य जो है अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि वो ग्यारहवें से नीचे आया और फिर किया, ऐसा उसमें लेना। वेदक समय दृष्टि में तो सर्व विशुद्ध के बाद उसने लिया, वो भी अंतर्मूर्त होगा। उन्होंने उपकस के समान बता दिया, वो केवल अनुत्कृष्ट और अजगण्य का मैच होगा, बाकी नहीं। हाँ अभी कृष्ण नील और कापोतलेशा में अभी इनका जगन्य करने वाला मादरे केंद्र पर्याप्त है, अपने उत्कृष्ट के समान है, यानी वो एक समय से अंतर्मूर्त होगा। और अजगण्य का मिनिमम अंतर्मूर्त होगा। अजगण्य का एक समय होगा, लेशा पलटती है तो भी, मैंने उत्कृष्ट किया जरा देख लो उसमें। नरक लेंगे वो तो बात है, वो अजगण्य अजगण्य के लिए ठीक है, पर अजगण्य का जगण्य काल वहां उत्कृष्ट का अंतर्मूर्ति लिया है ना, अनुत्कृष्ट का। अंतर्मूर्त है ना, कहाँ लिखा है
वो? अभी हम पढ़ रहे थे
वो पीत और पद्म का है।
नहीं, अच्छा अच्छा
उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया था, पेज नंबर 52 पर था। वो अनुत्कृष्ट के लिए वो कटित हो जाएगा। हाँ वही अजगण्य होगा। अब ये हो गई कृष्ण नील कापूत की बात हो गई। अब पीत और पद्मलेशा में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है, ये तो उनकी सर्व विशुद्धि लेना ना सात्विक गुण स्थान में, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि लेशाएं पलट जाएगी उनकी। अजगन्य स्थिति बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 2 सागर और साधिक 18 सागर है। यानी उसका अर्थ है जगन्य बंद करके एक समय में अजगन्य करके लेशा नहीं पलटेगी, तो अंतर्मूर्त क्यों लिया? अजगन्य का जगन्य काल अंतर्मूर्त लिया। वो देवों की अपेक्षा से है। मनुष्यों में अगर वो तो पीतलेशा में है, उत्कृष्ट करता है कब करते हैं, सॉरी जगन्य कब करेगा, तो सातवें गुणस्थान में करेगा। पीतलेशा में हमने देखा था ना, जो अप्रमत्त है, सर्व विशुद्ध है वगैरह वगैरह, शायद वो अति विशुद्ध है ना, वो तो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख वाला लिया होगा, तो वहां उसका अजगन्य नहीं होगा। यानी पीत से पद्म वाला होने वाला होगा, वो अजगन्य नहीं करेगा, उत्कृष्ट सॉरी जगन्य करके ही वो पद्म वाला हो जाएगा शायद, या शुक्ल में चला जाएगा। क्योंकि सर्वविशुद्ध अप्रमत्त वाला है ना, वो सर्वविशुद्ध अप्रमत्त वाला उसकी लेशा पलट कर उत्कृष्ट विशुद्धि वाली विशुद्धि की ओर बढ़ेगा। वो हाल में आती है। देखो देखो, मेरा ये सवाल था, मनुष्य और तीरियंचों में पीत लेशा वाले और पद्म लेशा वाले को जघन्य होता है, कब होता है? सातवें गुणस्थान में होता है। सातवें गुणस्थान में सर्व विशुद्ध जीव लिया, तो सर्व विशुद्धि के बाद उसी लेशा में वो नीचे नहीं आएगा। सर्व विशुद्ध तब कहेंगे, पीत से वो पद्म में चला जाएगा, पद्म से शुक्ल में चला जाएगा, इसलिए वहां उसका अजगन्य नहीं लेना है, अजगन्य अदरवाइज लेना है। तो अदरवाइज में उसका अंतर्मूर्त तक, यानी वो तो जहां पीतलेशा कांस्टेंट है देवों में, वहां अंतर्मूर्त अजगन्य हो जाएगा, उसका लेशा पलटेगी फिर उसकी। शी देवों में लेशा नहीं पलटेंगी, देवों में तो उसको कंटिन्यूस लेना है, नीचे के गुणस्थान वाले पीत लेशा वाले को ही लेना है। यहाँ पर क्षपणा करने वाला लिया ना, एक मिनट, कहाँ पेज नंबर 46, अथवा दर्शन मुख का क्षपक जीव तदनंतर समय में कृतकृत्य वेदक होगा, दूसरी लाइन। यानी उसके बाद उसको अजगन्य नहीं लिया है, जगन्य के बाद अजगन्य नहीं लिया है, अदरवाइज जो अजगन्य होगा तो बाकी काल में उसका अजगन्य ही रहेगा थ्रू आउट लेशा के काल में। इसलिए मनुष्य तीरियंचों में पीत पद्म लेशा कोई भी लेशा है तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहती है, तो वहां पर उसको ले लेना। तथा उत्कृष्ट काल क्रम से पीत के लिए साधिक 2 सागर और पद्म के लिए साधिक 18 सागर है। शुक्ल लेशा में, शुक्ल लेशा में तो क्षपक श्रेणी में घटित होगा। 7 कर्मों के जगन्य स्थिति बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्षपक श्रेणी में। अंतिम स्थिति बंध लेना उसका वो। और जगन्य स्थिति बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी अदरवाइज वो सारा अजगन्य ही होगा, इसलिए शुक्ल लेशा का मिनिमम काल लेना जो अंतर्मूर्त का होता है, तथा उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। उपशम सम्य दृष्टियों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। उपशम समय दृष्टियों में सात कर्मों का जघन्य कब होगा? उपशम श्रेणी में होगा। उपशम श्रेणी में नौवे या दसवें के अंत में यथायोग्य अपना अपना मोहनीय का या अन्य छह का जो होता है, तो अंतिम स्थितिबंध के अंतर्मूर्त में एंटर हुआ, एक समय के लिए जघन्य किया और फिर मरकर देव हुआ। नहीं, मरण तो वहां पर नहीं उसका ना, उपशम समय दृष्टि में द्वितीयोपशम करने, द्वितीयोपशम में मरण है तो वहां मरण हो गया। यानी एक समय के लिए जघन्य स्थिति बंध किया, उपशम के योग्य जघन्य किया और देव हुआ। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त तो समझ सकते हैं, अंतर्मूर्त को उसने उसका जघन्य किया, उसके योग्य जघन्य किया। हाँ, एक समय अंत में नहीं, दसवें के अंतिम अंतर्मूर्त का पहला समय, छह कर्मों के लिए। मोहिनी के लिए नौवे का अंतिम अंतर्मूर्त है जिसमें मोहिनी का जघन्य लगातार बंद हो रहा था, उसका एक समय तक करके देव में गया। यानी ऐसा लिखना है, अंतिम स्थिति बंध में एक समय रहा और मरकर देव हुआ तो उसका स्थिति बंध बढ़ गया। सासाधन समय दृष्टियों में आठ कर्मों का और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में सात कर्मों का काल उत्कृष्ट के समान है। यानी सासाधन में एक समय तो सासाधन का काल होता है, परंतु उसका जघन्य तो एक समय होगा। 46 में स्वामी तो बताया है, संयम से गिरकर जो सासाधन हुआ है, परंतु जघन्य का जघन्य रहने का काल अंतर्मूर्त होगा, कितना होगा? उत्कृष्ट का तो एक समय हो सकता है, परंतु जघन्य का कितना होगा? जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बताया था सासाधन का। यहाँ पर भी एक समय से अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि वो सासाधन में एक समय रहा, जघन्य किया उसने, संयम से गिरकर आया, एक समय में मिथ्या तो में चला गया, ये हो सकता है। यानी एक समय होगा, एक समय से अंतर्मूर्त जघन्य रहा, और अजघन्य का एक समय से छह अवली। सांसाधन का काल लिया इस जघन्य से उत्कृष्ट तक, यानी जो देव से संयम से नहीं गिरा है, चौथे से आया है नीचे दूसरे में या पांचवे से आया है, उसका अजघन्य होगा और एक समय रहकर वो मिथ्यात्व में चला गया। संगियों में पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के समान काल है, वही जघन्य तो क्षपक में होगा, सम्यक मिथ्या दृष्टियों में तो अंतर्मूर्त होगा। सासाधन का तो मिनिमम काल एक समय है ना, सम्यक मिथ्या दृष्टियों में जघन्य कब होगा? चौथे के सन्मुख वाला होगा। और यहाँ उत्कृष्ट में हमने मिथ्या तो के सन्मुख लिया था, दोनों का ही उत्कृष्ट काल जगह ने उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही लिया है। जघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, जघन्य कब होगा? चौथे के सन्मुख होगा और बाकी अजघन्य रहेगा, वो भी अंतर्मूर्त ही रहेगा। अब संगी की बात देख रहे थे, पंचेन्द्रिय पर्याप्त कों के समान काल है, यानी उसमें जघन्य कब होगा संगी में? क्षपक में होगा। तो क्षपक में जघन्य का जघन्य भी और उत्कृष्ट भी काल अंतर्मूत रहता है, अजघन्य अजघन्य का जघन्य कब होगा? तो दो बार श्रेणी के बीच में, दो श्रेणी के बीच में। और संगी का रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? तो शत पृथक्व सागर, यानी पृथक्व सौ सागर जिसको हम कहेंगे वो। और असंगियों में सामान्य तिरियंचों के समान काल है, यानी असंगी में जघन्य कौन करेगा? तो बांदर पर्याप्त जो है एक केंद्रीय, वो एक समय से अंतर्मूर्त होगा, जघन्य का एक समय से लेकर अंतर्मूर्त, और अजघन्य का मिनिमम अंतर्मूर्त होगा और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक होगा। आहारकों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वही क्षपक श्रेणी में। अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है। एक समय कैसे होगा? उपशम श्रेणी उतरते हुए स्थिति बंद किया, श्रेणी में भी वो आहार ही था परंतु ग्यारहवें में स्थिति बंद नहीं था, दसवें में आते ही एक समय के लिए बंद किया और मरकर कारमान का योग में चला गया, अनाहारक हुआ, तब एक समय घटित होगा। और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात पे भाग प्रमाण है, जो आहारक में रहने का, आहारक से आहारक रहने का उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात भाग होता है। अब इसी का विशेषांक पढ़ेंगे 59 पेज पर। इस प्रकरण में जहां जो विशेषता थी उसका हम स्पष्टीकरण कराए हैं। साधारणता सर्वत्र अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है, और जहां भवस्थिति ही काय स्थिति है, ऐसे कहां होता है मैं भाई भवस्थिति ही काय स्थिति होती है? पहले में पहले भवस्थिति क्या है और काय स्थिति क्या है? एक भव, हाँ। तो भवस्थिति और काय स्थिति समान कहां होगी? काय स्थिति अकेले काय को नहीं लेना है, वो मार्गणा का उत्कृष्ट काल लेना है। अभी देव गति वाली मार्गणा तो उसका उत्कृष्ट काल कितना है? 33 सागर। और उसका उत्कृष्ट भव कितना है? 33 सागर। कितने काल का है एक भव? बड़ा में बड़ा भव कितना है? बड़े में बड़ा भव जो है देव का, वही उसके देव मार्गणा जो है देवगति मार्गणा, उसका एक ही भव हो सकता है, लगातार देव से देव नहीं होता, इसलिए वहां जो भव स्थिति है वही काय स्थिति है। देव है नारकी है, जो भव स्थिति है वही काय स्थिति है। देखो भव स्थिति ने उत्कृष्ट भव कितना बड़ा हो सकता है? तिरियंचों में भव स्थिति कितनी है? एक बड़ा भव कितना हो सकता है? तीन पल्ले का। और काय स्थिति कितनी है? अनंत काल है। मनुष्यों में एक बड़ा भाव कितना है? तीन पल्ले का। और तीरंच में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सारे भाव हो गए ना, उसको तीरंच पलटकर मनुष्य हो जावे या देव में चले जाए तो उसके मार्गणा पलट, तब तक उसको काय स्थिति कहेंगे। मनुष्यों की काय स्थिति कितनी है? यानी लगातार मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य रहे तो, तो हम कहेंगे ना कि 47 पूर्व कोटि और 3 पल्य। पर मनुष्य की भव स्थिति कितनी है, तो मैक्सिमम बड़ा भव कितना है, तो 3 पल्य। तो यहाँ क्या रहे कि जहाँ भव स्थिति ही काय स्थिति है, ये कहाँ होता है, देव और नारकी में होता है, एक भव है वही उसकी काय स्थिति है, वहां तत्प्रमाण प्राप्त होता है। यानी देवों के लिए अजगण्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट काल कितना होगा, उसका अपना अपना भव है, वही उसकी काय स्थिति है। बहुत सी ऐसी मार्गणाएं भी है जिनमें भव स्थिति और काय स्थिति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। कौन सी है, उपशम सम्यक तो है, सासाधन है, लेश, कोई जो उसका अपना काल अलग है, वो बहुत से संबंधित नहीं है। इसलिए वहां उस मार्गणा का जो उत्कृष्ट काल हो, तत्प्रमाण और जगन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। मात्र कुछ मार्गणाएं इस नियम का अपवाद है। उदाहरणार्थ मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान का उसमें केंद्रीय का हमने देखा था, उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। या मत्य ज्ञान का तो हम कहेंगे ना, तो अनादि से चल रहा है, अनादि अनंत भी कहेंगे। पर इनमें अजगण्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ही प्राप्त होता है, सो इसका खुलासा सामान्य तिर्यंचों के समान जान लेना चाहिए। तथा इसी प्रकार सर्वत्र सब कर्मों के जगन्य स्थितिबंध के जगन्य और उत्कृष्ट काल का तथा अजगन्य स्थितिबंध के जगन्य काल का खुलासा ओग प्ररूपना को और बंध स्वामित्व को देखकर कर लेना चाहिए। वो हमने बार बार देखा था उसको। यहाँ इतना विशेष कहना है कि यहाँ सर्वत्र आयु कर्म के जगन्य और अजगन्य स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल नहीं कहा है, सो इसका कारण यह है, जहां आयु कर्म का बंध संभव है, वहां आयु कर्म के जगन्य स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। क्योंकि आयु बंध का जो अंतर्मूर्त है, उसके अंतिम समय में हम जगन्य बंध कहेंगे, क्योंकि वहां आबाधा मिनिमम होगी। तथा अजगन्य स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण उपलब्ध होता है, यही कारण है इसका कहीं भी निर्देश नहीं किया है। इस प्रकार बंध काल समाप्त हुआ। यानी हमने इसमें उत्कृष्ट स्थितिबंध का लगातार काल जो जगन्य और उत्कृष्ट उसको भी देखा, और जगन्य स्थितिबंध का लगातार काल जगन्य उत्कृष्ट भी देखा और अजगन्य का भी देख लिया। इस तरह से हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का और जगन्य अजगन्य का बंध काल देख लिया। अभी यहां से अंतर प्ररूपणा प्रारंभ हो जाएगी, वो नया विषय हम कल से ले लेंगे। अभी तो कोई उत्कृष्ट बंध कर रहा था, फिर लगातार उसने उत्कृष्ट बंध नहीं किया, तो उत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा। और अनुत्कृष्ट का अंतर कब कहेंगे, जब बीच में उत्कृष्ट हो रहा है, या जब बीच में बंद, जैसे 11वें में बंद ही नहीं है, तब अनुत्कृष्ट का अंतर कहेंगे, वो चर्चा कल करेंगे हम। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ।